श्री राम जय जय राम। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आदगुरये नमः, जुगादगुरये नमः, सद्गुरये नमः, श्रीगुरुदेवये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्द भगवान् की जय। श्री स्वामी निर्मल जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। कण कण में घट घट में विराजमान सर्वंत्र जामी प्रभु पिता परमात्मा के चरणारविंदों का ध्यान करते हुए सर्वकालवंद ब्रह्मलीन वेदांत केसरी श्री स्वामी निर्मल जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। उन्हीं की पावन तपस्थली में तत्व चिंतन के पिपासु रूप में उपस्थित श्रोता रूप में निजात्माओं सबका अभिनंदन। स्वामी जी महाराज जी की कृपा हो रही है, उन्हीं की कृपा से उन्हीं के आशीर्वाद से हम हर रोज वेदांत चिंतन कर रहे हैं। ईशावास्य उपनिषद के ऊपर हमारा चिंतन चल रहा है, जो सर्वंतरजामी कण कण में घट घट में व्याप्त सर्वाधिष्ठान निराकार निरानिर्वैर प्रभु पिता परमात्मा, जिसको हम ईश्वर बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, और उसके साथ हमारा अभेद कैसे हो, जो हम अपने आप को जीव मान रहे हैं, हमारा जीवपन कैसे हटे, हम ब्रह्म स्वरूप कैसे अनुभव करें, यह चिंतन हम कर रहे हैं उपनिषद के माध्यम से वेदांत चिंतन कर रहे हैं। जो कल पांचवा मंत्र हमने चिंतन किया, तदे जति तन्नई जति तत्दूरे तद्वंतिके, तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यस्य बाह्यतः, यह हमने चिंतन किया था कि वह ईश्वर वह आत्मा कैसा है, कि एजति वह चलता भी है, जब उपाधि युक्त होता है तो चलता सा लगता है, जब निरुपाधि हो जाता है तो फिर नहीं भी चलता, स्थिर है। और वह सब जगत के सभी वस्तुओं के भीतर भी है और बाहर भी है, वह पास में ही भी है और वह दूर में भी है। यह चिंतन हमने किया था, जानी ब्रह्म सर्वत्र है, घट घट में व्याप्त है, ऐसा अनुभव ऐसी दृष्टि हमने बना ली है, तभी इस संसार को इस जगत को ईशावासम इदम सर्वम की जो हमारा श्रुति का जो वेद का आदेश है कि इस जगत को ईश्वर से ढक दो, तभी हो सकता है जब हम ऐसा चिंतन करेंगे, ऐसी दृष्टि बनाएंगे, सबके अंदर बाहर भीतर उसी का दर्शन करेंगे। जो बात वहाँ से आरंभ हुई थी उसी को ही आज षष्ठ मंत्र में भगवती श्रुति कह रही है, जस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। भगवती श्रुति का आदेश है जस्तु सर्वाणि भूतानि, जहाँ पर जह तू, तू का अर्थ है किंतु, पहले बात पीछे कही थी सामान्य रूप में सबके लिए, अब किंतु कहते हैं परंतु, यानी यहाँ पर अधिकारी की बात करते हैं कि ऐसा जो पीछे आदेश हमने श्रवण किया वो तो सब लोग सुन लेते हैं, श्रवण करते हैं सब लोग, वेदांत के महावाक्यों का गुरुजनों से श्रवण करते हैं, परंतु यह अर्थ है जो जो जिज्ञासु तत्ववेत्ता क्या दर्शन करता है, क्या चिंतन करता है, सर्वाणि भूतानि जितने भूत पदार्थ हैं, आत्मनि एव अनुपस्यति, सभी भूतों को अपनी आत्मा में देखता है, और सर्वभूतेषु चात्मानम्, और सभी भूतों में अपनी आत्मा को देखता है, ऐसा जो जिज्ञासु है तत्ववेत्ता है, ततो न विजुगुप्सते, वो अगर किसी से घृणा नहीं करता। आज के मंत्र का मूल भाव तो यही है कि जो सभी भूतों में आत्मा को देखता है और आप सभी भूतों को अपनी आत्मा में देखता है, दर्शन करता है, चिंतन करता है, ईक्षण करता है, वो फिर किसी से घृणा नहीं करता। तो जो मनुष्य के अंदर एक वणक वृत्ति है, वो उसे प्रेरित जब होता है तो क्या करता है, हरेक मनुष्य ऐसा सोचता है कि वो ही काम करना चाहता है जिसमें उसको लाभ हो, दूसरा काम नहीं करना चाहता, क्योंकि अंदर क्या है, वणक वृत्ति है, व्यापार वाली वृत्ति है। तो हरेक आदमी ये सोचता है कि ऐसा कार्य करूं जिससे मेरे को लाभ हो, तो इसलिए कहते हैं कि वो सुन लेता है वेदांत के वाक्य, श्रवण कर लेता है तो कह देता है, उसकी वृत्ति ऐसी कि सोचता है कि आत्मा ब्रह्म है तो ब्रह्म रहे, हमारे से क्या लेना है, हमारे इससे क्या लेना है, उससे जानने से हमारे को लाभ क्या होगा, लाभ नहीं ना दिखता उसको, उसकी लाभ की वृत्ति रहती है कि ऐसा ही काम मैं करूं जिसमें मेरे को लाभ हो। तो आत्म का चिंतन करने की क्षमता नहीं होती ना, इसलिए सोचता है कि आत्मा ब्रह्म है तो उसको ब्रह्म को प्राप्त करके हम करेंगे क्या, जैसी संसार की वस्तुओं का चिंतन करके उसको धन की अर्थ की प्राप्ति होती है, ऐसे सोचता है कि कोई संसार की वस्तु बढ़ जाए हमारी, चिंतन करने से हमारा जश बढ़ जाए, धन बढ़ जाए, अर्थ बढ़ जाए, पदवी बड़ी मिल जाए, इसी वृत्ति से चिंतन करते हैं ना हम लोग, कोई पूजा पाठ करते हैं या कोई ऐसा धर्म का कार्य करते हैं तो उसमें हमारी वृत्ति यही होती है कि संसार में हमारा जश हो, हमारा काम बढ़ जाए, हमारी लाभ की हमारी वृत्ति रहती है। तो इसलिए आए जो मंत्र है ना, इसमें उसी का उत्तर दे रहे हैं, उसी का जो ऐसा आदमी सोचता है उसी को ही इस मंत्र में बता रहे हैं, क्योंकि पहले तीसरे मंत्र में जो कहा था कि ईश्वर को जो नहीं जानते वह आत्मघाती है, तो प्रश्न ये होता है कि ईश्वर को नहीं जाना तो आत्मा का घात कैसे हुआ, ईश्वर को नहीं जाना तो ईश्वर का घात होना चाहिए, तो आत्मा का घात कैसे होगा? तो ये उत्तर यहाँ पर भगवती श्रुति देने जा रही है कि ईश्वर और आत्मा दो पदार्थ नहीं है, एक ही पदार्थ है। इस मंत्र का महत्व इस बात से भी बढ़ जाता है, ये जो मंत्र है इसी के साथ के जो श्लोक हैं गीता में मनुस्मृति में भी आते हैं, वहाँ पर भी भगवान कहते हैं गीता में छठे अध्याय में कहते हैं सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। भगवान में कहते हैं वहाँ पर कि जितने भूत पदार्थ हैं वो सभी आत्मा में हैं, और सर्वभूतानि चात्मनि, आत्मा सभी भूतों में है और भूत सभी आत्मा में है। लेकिन ऐसा दर्शन कौन करता है? आगे कहते भी इच्छते जोग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनः, सभी ऐसा चिंतन नहीं कर सकते। कौन करता है? जोग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनः, सभी जगह सर्वत्र समदर्शन करता है, सभी भूतों में आत्मा का दर्शन करता है और सभी भूतों को अपनी आत्मा में देखता है। कौन देखता है? जोग युक्त आत्मा, युक्त आत्मा, जो आत्मा से अभेद जिसने तादात्म्य किया है, आत्मा का चिंतन करके आत्मा के साथ और ईश्वर आत्मा का दो भेद था उसको मिटा करके ऐक्य स्थापित किया जिसने, वो ऐसा चिंतन करता है, सभी भूतों को आत्मा रूप देखता है। इसलिए अब मंत्र पर विचार करते हैं, मंत्र के शब्दों पर ध्यान देते हैं कि इस मंत्र में तू शब्द आया है, जस्तु सर्वाणि भूतानि तू शब्द आया है, तो तू शब्द जो आया है उसका अर्थ होता है किंतु, परंतु या कहते हैं या किंतु कहते हैं, तो प्रश्न होता है ना कि क्या तू से क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर कहते हैं कि जहाँ पर तू शब्द से पूर्व पक्ष का निषेध किया है जहाँ पर, तो पूर्व पक्ष है क्या है? तो पूर्व पक्ष जहाँ पर यह है कि संसार में हरेक प्राणी जो है उसके जीवन में क्या है, चारों ओर भय है, दुख है, अज्ञान का अनुभव करता है हरेक प्राणी, चारों तरफ उसको दुख ही दुख दिखता है, उसको भय ही दिखता है, दुख ही दिखता है। इसके वशीभूत जब होता है प्राणी तो अपने आप को परिच्छन्न मानता है, संसारी कर्ता भोक्ता मानता है। तो ऐसा जब अनुभव के अनुभव करता है कर्ता भोक्ता परिच्छिन्न, तो फिर क्या होता है उसको? फिर वो सृष्टि में राग द्वेष करता है। जब अपने अपने को भय युक्त देखता है, मोह युक्त देखता है, तो फिर क्या करता है? सृष्टि में राग और द्वेष करता है। जो अनुकूल पदार्थ होते हैं उसमें राग करता है, जो प्रतिकूल होते हैं उसमें द्वेष करता है। तो राग द्वेष के द्वारा क्या होता है? उसके संस्कार बनते हैं। तो संस्कार से क्या होता है? उसकी वासना की पुष्टि होती है, तो वासना से फिर देह होती है। इस प्रकार ये उसका चक्र जो है ना चलता रहता, पुष्ट होता रहता है। उससे छूटने के उपाय तो कई प्रकार के बताए जाते हैं। ये जो विषय चक्र है ना संसार का, इससे छूटने के उपाय कई हैं शास्त्र में अलग अलग। जैसे जो कर्म करने वाले लोग हैं वह धर्म आचरण से इस विषय चक्र को काटना चाहते हैं, और जो उपासक लोग हैं वह सगुण साकार की उपासना के द्वारा, और जो योगी लोग हैं वो क्या करते हैं? वृत्ति का निरोध करके विषय चक्र को काटना चाहते हैं। हरेक शास्त्र में अलग अलग उपाय हैं, परंतु जो वेदांत है, वेदांत इस बात को नहीं, वेदांत की प्रक्रिया अलग है। वेदांत का ये सिद्धांत है कि वेदांत के अनुसार जो धर्म है, उपासना है, अथवा वृत्ति जो निरोध है, ये कोई भी मोक्ष को देने में समर्थ नहीं, सीधे तौर पर नहीं है। परंपरा से तो दे सकते हैं लेकिन सीधे तौर पर नहीं। जब आप धर्म का आचरण करेंगे, उपासना करेंगे, वृत्ति का निरोध करेंगे तो क्या होगा? धर्म का आचरण करने से आपके अंतःकरण की शुद्धि होती है, उपासना करने से आपके जो विक्षेप हैं अंदर, जो चांचल्य है, उसकी निवृत्ति होती है, और वृत्ति का निरोध करते हैं तो जो आपकी वृत्ति बहिर्मुख होती है, अकेली अकेली वृत्ति को आपको रोकना पड़ता है, यत्न है आपका। इसलिए यहाँ पर जो वेदांत का चिंतन करने वाले हैं, यहाँ पर किसी क्रिया की जरूरत नहीं पड़ती। वेदांत क्रिया से, कर्म से, उपासना से नहीं कहता है मोक्ष, केवल ज्ञान से, रहते ज्ञानहन मुक्ति, ये वेदांत का सिद्धांत है कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। तो जो ज्ञान है, ज्ञान कोई क्रिया नहीं है, ज्ञान कोई उपासना नहीं है, ज्ञान तो विवेक, अपना विश्लेषण करना है, चिंतन करना है, यानी यथार्थ रूप जानना है वस्तु का। कोई भी पदार्थ आपके सामने है तो उसके यथार्थ स्वरूप को जानना है, इससे वेदांत की मुक्ति है। और जो आपको कर्म से अथवा उपासना से मुक्ति मिलेगी ना कालांतर में, वो आपके यत्न साध्य होगी, वो अनित्य होगी, क्योंकि कर्म का फल अनित्य होता है। जो कर्म से आपको फल मिलता है वो अनित्य होता है, नित्य नहीं रहता है, क्योंकि कर्म भी अनित्य है, तो कर्म के द्वारा जो साध्य फल है वह भी अनित्य है। तो इसलिए वेदांत की जो विलक्षणता है कि वेदांत केवल ज्ञान मात्र से दुखों की निवृत्ति स्वीकार करता है, तो दूसरे सिद्धांतों में तो अलग अलग आपको बता दिया। तो ज्ञान की जो, वेदांत की जो मुक्ति है वह उत्पाद्य नहीं है, उत्पन्न होने वाली नहीं है। जब मुक्ति उत्पन्न होगी तो उसका नाश भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर हम चिंतन करेंगे कि ज्ञान के द्वारा मुक्ति बताई है, तो ज्ञान दृष्टि हमारे को बनानी है, क्रिया नहीं। जैसे घड़े को हम फोड़ना होता है, नाश करना होता है, तो डंडे से नाश कर सकते हैं, किसी भी संसार की वस्तु को क्रिया से नाश कर सकते हैं। नाश और बाध दो प्रकार की निवृत्ति होती है, एक नाश और दूसरा बाध। तो नाश जो होता है वो क्रिया से होता है, लेकिन जो बाद हम करते हैं वो ज्ञान से करते हैं, क्रिया से नहीं। मानो किसी कमरे में या किसी गुफा में बहुत युगों से अंधेरा है, तो जो अंधेरा है उसको दूर करने के लिए जितने काल से अंधेरा है उतना काल नहीं लगता ना। जब आपने दीपक जलाया उसी समय अंधेरा भाग जाता है। इसी प्रकार जो हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधेरा है, अविद्या है, कितने जन्मों जन्मांतरों से है, उसको भगाने के लिए इतना समय कर्म नहीं करना पड़ेगा। वो तो जैसे गुरुदेव जी लिखते हैं कि दीवा बले अंधेरा जाए, जब दीपक प्रज्वलित हुआ उसी समय अंधेरा समाप्त, क्योंकि प्रकाश और अंधेरे का नित्य विरोध है, एक जगह नहीं रह सकते। हमारे जैसे स्वप्न है आपका, स्वप्न कब तक है? जब तक आपको आपकी निद्रा नहीं खुलती, जब भी आप जागे तो स्वप्न की समाप्ति। इसी प्रकार यह जो जगत का, जो प्रपंच का भ्रम है, ये कब तक है? अनादि माया सुप्तो जदा जीवा प्रबुद्धते, ये कहते हैं मांडूक के कारिका में ऐसा लिखा है कि अनादि काल से जीव जो है अविद्या में सोया हुआ है। अनादि माया सुप्तो, अनादि माया, अनादि काल से जीव इस माया में सोया पड़ा है, लेकिन कब छूट जाता है? जदा जीवा प्रबुद्धते, जब जीव प्रबुद्ध हो गया, जाग गया, फिर अजम निद्रम, फिर अपने आप को अज मानता है, अस्वप्न मानता है, दुख से रहित मानता है। ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, जब ही ज्ञात हुआ उसी समय तुरंत ही द्वैत का नाश होता है। यानी कि पहले ज्ञान आएगा उसके बाद द्वैत का नाश होगा, ऐसा नहीं है। ज्ञान होना ही द्वैत का नाश है और अज्ञान ही द्वैत है। तो जो कर्म के द्वारा मुक्ति प्राप्त करते हैं, पहले कर्म करेंगे उसका फल जो है उसको मुक्ति मानते हैं, यानी स्वर्ग में चले जाएंगे, किसी लोक में जाएंगे, यही मुक्ति है कर्म की। जिस लोक की वासना से कर्म करेंगे उस लोक में जाना ही तो कर्म की मुक्ति है। लेकिन जब वहाँ आपका बैलेंस, आपका फल जब समाप्त हो जाएगा तो वही मुक्ति आपकी वहाँ पर समाप्त है। कर्म से यही मुक्ति मिलती है, छीणे पुण्य मर्त्यलोक विशन्ति। जब लोक के द्वारा आप कर्म करेंगे तो जिस लोक में जाएंगे वो लोक से जब आपका कर्म फल समाप्त हुआ तो वो मुक्ति आपकी अनित्य हो जाएगी। इसलिए कर्म के द्वारा मिलने वाली मुक्ति उत्पाद्य है और अनित्य है। जो ज्ञान से मिलने वाली मुक्ति है वो मुक्ति मिलने वाली नहीं है, केवल ऐसा लगता है कि हम मुक्त हुए हैं, मुक्त होना नहीं है। मुक्त तो पहले हैं, केवल जो हमारे को बीच में भ्रांति हुई थी उस भ्रांति को दूर करना। तो इसलिए जहाँ पर मंत्र में कह रहे हैं कि यस्तु सर्वाणि भूतानि, जो व्यक्ति जिज्ञासु तत्ववेत्ता जो होता है, अधिकारी है, साधन चतुष्टय संपन्न जो अधिकारी है, वो कैसा भी हो, यह कहा इस पद से ये कहा कि कोई मनुष्य हो, कैसा भी हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी देश का हो, भारतीय हो अथवा अभारतीय हो, यहाँ पर कोई बात नहीं है, आग्रह नहीं है किसी पंथ का, यहाँ से सबको कह दिया कोई भी हो, यानी सभी लोग मुक्ति के अधिकारी हैं, किसी वर्ण का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, यहाँ पर आग्रह नहीं है किसी पंथ का। वेदांत जो है इसके ऊपर किसी का अधिकार एक आदमी का नहीं है, वेदांत सबकी बात करता है कि किसी वर्ण जाति का, देश विदेश किसी का भी हो, कोई भी हो, उसकी बात करते हैं कि जो भी ईशावास्यम विदम सर्वम इस प्रकार की दृष्टि चाहता है उसके लिए अब इस मंत्र में ज्ञान की प्रक्रिया बताते हैं कि उसको ये वाली जो प्रक्रिया है ये बतानी पड़ेगी, उसको ये धारण करनी पड़ेगी, तब वो ईशावास्यम विदम सर्वम वाली उसको दृष्टि प्राप्त हो सकती है। दृष्टि यानी ज्ञान, उसको केवल दृष्टि बनानी है ईश्वरमय सृष्टि, तभी उसको भासने लगेगी। और सृष्टि कोई बदलेगी नहीं, जैसी है वैसी रहेगी, कोई किसी वस्तु में बदलाव नहीं आएगा। बदलाव तो आप कर्म से ही कर सकते हैं ना, परिवर्तन यत्न से कर सकते हैं। इस मंत्र में ऐसा कहते हैं कि अनुभवति अनुपश्यति अस्ति, यानी ऐसा होता है, करोति भवति ऐसा नहीं है, ना प्रयत्न है ना परिवर्तन है, कुछ भी नहीं है। अस्ति में ना प्रयत्न है ना परिवर्तन है, भवति में है प्रयत्न है, भवति में परिवर्तन है, लेकिन करोति में प्रयत्न में है और परिवर्तन भी है। एक बदलना होता है ना, एक प्रयत्न होता है। तो यहाँ पर आपको केवल ना प्रयत्न है ना परिवर्तन है, कुछ भी नहीं है, केवल होना है ऐसा समझना है, होना भी नहीं है। प्रयत्न से आप परिवर्तन बदल करके ऐसा होंगे, आप कहेंगे हम ऐसे थे ऐसे हो गए, प्रयत्न से हो गया, पहले मैं पतला था अब मोटा हुआ हूँ ना, ऐसा हम कहते हैं कि प्रयत्न किया तो परिवर्तन आया तब हम बदल गए। लेकिन जब आपको ईशावास्यम इदम सर्व वाली दृष्टि प्राप्त करनी है तो परिवर्तन से और प्रयत्न से नहीं करनी है, परिवर्तन नहीं कुछ भी होगा, जैसा था वैसा ही है। श्रुति जो आपके स्वरूप का अनुवाद करती है, ज्ञान किसी को बदलता नहीं है, जैसा कोई होता है वैसा उसको यथार्थ बताना ही ज्ञान है, बदला नहीं जाता। तो इसलिए अब बात यह है कि यहाँ पर जितने भूत प्राणी हैं वो सब आत्मा में है और आत्मा सभी भूतों में है। तो भूत क्या है? तो कहते हैं कि जो आपको उपाधि उपाधिक संसार में वस्तुएं किसी रूप में भी आपको दिखाई पड़ती है, किसी रूप में भी, दृष्टा के रूप में, दृश्य के रूप में, उपादान के रूप में, कार्य के रूप में, करण के रूप में, किसी रूप में जो भी आपको संसार में दिखाई पड़ रही ना, उपाधि और उपाधिक, उपाधि से युक्त जो उपाधिक जो वस्तुएं हैं ये सब भूत हैं। तो ये जो आपको उपाधि उपाधिक वस्तुएं भूत रूप में दिखाई पड़ती हैं ये क्या है? ये कहते सब आत्मनि एव पश्यति, यह पश्यति, यो इस आत्मा में देखता है इसको। तो ये कहते हैं कि आत्मा में देखने का मतलब क्या हुआ? दर्शन करना। यहाँ पर एक बात है अनुपश्यति, अनुकार्थता पश्चात, अनुकार्थता पश्चात, पश्यति मतलब देखना। जैसे मानो जो नेत्र है वो रूप को देखता है, नेत्र से हमने रूप को देखा तो उसके पश्चात क्या हुआ? पहले नेत्र ने रूप को देखा, केवल देखा रूप को नेत्र ने, लेकिन नेत्र ये नहीं बतला सकता कि ये सुंदर है कि असुंदर है, ये नहीं बताएगा। नेत्र केवल देखता है, नेत्र के द्वारा आपकी वृत्ति रूप तक पहुंचती है। सुंदर असुंदर को कौन बताता है? बुद्धि। बुद्धि से आप कहते हैं कि ये सुंदर है कि असुंदर है। तो पहले नेत्र ने क्या हुआ? देखा। अनुपश्यति अनुकार्थ पश्चात, पीछे। पहले नेत्र ने देखा, बुद्धि के उस बुद्धि ने उसके पश्चात कहा कि ये सुंदर है कि असुंदर है, ग्रहणीय है कि अग्रहणीय है, चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बुद्धि। और जो बुद्धि है उसने मानो सुंदर असुंदर को देखा, लेकिन उस बुद्धि के पीछे कौन है? बुद्धि भी तो वृत्ति है ना अंतःकरण की, उस बुद्धि का प्रकाशक कौन है? उसके अनु यानी उसके पीछे कौन है? आत्मा। उसने रूप और बुद्धि और नेत्र सबको प्रकाशित किया आत्मा ने। तो अनुपश्यति, ऐसे चिंतन करेंगे ना कि आत्मा सूक्ष्म है, तो यानी सबका प्रकाशक कौन है? आत्मा। तो जो बुद्धि है, नेत्र है, रूप है, ये सब भूत हो गए ना, तो सभी भूतों में आत्मा है। इस प्रकार प्रकाशक रूप में सभी भूतों में आत्मा है, यानी जो सबके पीछे है। इस प्रकार से चिंतन करेंगे, इंद्रिय है पर अर्था, इंद्रिय से सूक्ष्म अर्थ, अर्थ से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा, इंद्रिय है परा ही अर्था, अर्थे भ्रष्ट परम मनः, मानसस्तु परा बुद्धि। इंद्रियों से सूक्ष्म विषय है, विषय से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि और बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा। इस प्रकार जब चिंतन करते हैं तो फिर ये चिंतन होता है कि जैसे मानो एक ये पुस्तक सामने पड़ी है, इसमें सभी बातें घट जाती हैं। ये इसको नेत्र ने देखा, इसका प्रमाण नेत्र हुआ, सत है और ये भासती है और ये प्रिय लगती है, सभी इसमें घट जाएंगे कि नहीं? एक पुस्तक को देखने में सभी बातें घट रही है, जैसे इसकी उपयोगिता क्या है, इससे क्या होता है, ये सभी बातें एक पुस्तक में जैसे हम घटा सकते हैं, उसी प्रकार हरेक जो पदार्थ है ना संसार का, उसमें ये सब बातें घट सकती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो ऐसा दर्शन करता है अनुपश्यति, वैसे संसार में आप चिंतन करेंगे साधारण रूप से, तो जो अध्यस्त होता है वह अधिष्ठान नहीं हो सकता, जो अधिष्ठान होता है वह अध्यस्त नहीं हो सकता, यानी कल्पित नहीं हो सकता। जो दृष्टा है वह दृश्य नहीं हो सकता, जो दृश्य है वह दृष्टा नहीं हो सकता, जो कार्य है वह कारण नहीं हो सकता, जो कारण है वह कार्य नहीं हो सकता। क्योंकि संसार के जितने पदार्थ हैं वह सब गतिशील है ना, उनका उसमें ऐसा सिद्धांत नहीं घटता। एक जो कल्पित होगा वह कल्पित ही होगा, जो अधिष्ठान होगा वह अधिष्ठान ही होगा। लेकिन यहाँ पर आत्मदृष्टि में ऐसा है, यहाँ पर आत्मदृष्टि जो वेदांत दर्शन है इसमें जब आप चिंतन करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, संसार की दृष्टि से उल्टा चिंतन करना पड़ेगा। वहाँ पर जो दृश्य है वह दृष्टा नहीं है, जो कार्य है वह कारण नहीं है, जो अध्यस्त है अधिष्ठान नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो चिंतन करना है उल्टा, कहा ना पीछे कि वही सब कुछ है, अंदर बाहर भीतर वही है, तो फिर कैसे चिंतन करेंगे? संसार की दृष्टि से चिंतन करेंगे तो नहीं होगा, संसार में कार्य कार्य ही रहेगा, कारण कारण ही रहेगा, दृष्टा दृष्टा ही रहेगा, दृश्य दृश्य ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर तो कहते आत्मा ही सब कुछ है, इसमें कुछ भी नहीं है, उसमें कार्य कारण भाव भी नहीं है, उसमें दृष्टा दृश्य भी नहीं है, अध्यस्त अधिष्ठान भी नहीं है, केवल आपको बताने मात्र समझाने मात्र है। यानी यहाँ पर चिंतन करना होगा कि दृश्य भी आत्मा, दृष्टा भी आत्मा, कार्य भी आत्मा, कारण भी आत्मा, सभी भूतों में जब कहा कि आत्मा है और सभी भूत आत्मा में हैं तो फिर ऐसा ही चिंतन करना पड़ेगा ना, भूत हैं अध्यस्त और आत्मा है अधिष्ठान। तो संसार में तो ऐसा नहीं होता ना, जो अधिष्ठान होता है वो अध्यस्त नहीं हो सकता। यहाँ पर दोनों आप ही बना हुआ है, आप ही भूत रूप में है और आप ही अधिष्ठान रूप में, आप ही अध्यस्त है। या जब ऐसा कहेंगे कि सभी भूत आत्मा में है और आत्मा सभी भूतों में है, तो फिर दोनों में अधिष्ठान अध्यस्त भाव बन जाएगा। जब आत्मा भूतों में है तो जो भूत हैं वो अधिष्ठान बन जाएंगे, आत्मा अध्यस्त बन जाएगा। जब भूत आत्मा में है तो आत्मा अधिष्ठान हो जाएगा, भूत अध्यस्त हो जाएंगे। तो फिर दृष्टि यह बनानी पड़ेगी ना कि अधिष्ठान अधारा अधेय जो भाव है केवल हमारी भ्रांति दूर करने के लिए है, क्योंकि वह आप ही इस रूप में दिख रहा है, परिवर्तन नहीं हुआ। पहले भी हमने आपको बताया कि परिवर्तन नहीं करना, प्रयत्न से परिवर्तन नहीं करना, केवल ऐसा अनुपस्यति कहते वह जो अधिकारी है वो ऐसा देखता है, यानी परिवर्तन नहीं करता, यानी कि उसने भूतों को आत्मा रूप में बदलना है, जहाँ आत्मा बदल के भूत रूप हुआ था, ऐसा वास्तव में होता तो आप बदल भी नहीं सकते। जब ये कहें कि आत्मा भूतमय है तो जब भूतों में आत्मा है तो बदल के थोड़ी भूत हुआ है, ना भूत ही बदल के आत्मा होंगे ऐसा भी नहीं है। जब दृष्टि बदलेगी तो जैसा था वैसा ही रहेगा, भूत जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, आत्मा जैसा है वैसा ही रहेगा। तो केवल हमारी दृष्टि में बदलाव करना है। जस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव पश्यति, ये कहा था कि जो सभी भूतों को आत्मा में देखता है, और सर्वभूतेषु चात्मानम्, सभी भूतों में आत्मा को देखता है, ततो न विजुगुप्सते, वह फिर कहते किसी से घृणा नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता। तो जो विजुगुप्सा का अर्थ है घृणा, तो घृणा जो शब्द है ना वह बना है घी धातु से, उसका अर्थ है पिघलना, पिघलना, उसी से घृणा बनता है, उसी से घी बनता है, घृत जिसको हम बोलते हैं, उसी से गर्म, गर्म यानी ताप गर्मी, ये सब उसी से बनते हैं। तो मानो जैसे हमारे चित्त में कोई विक्षेप हुआ तो क्या हुआ, हमारा चित्त पिघल गया, कहते ना मेरा मन पिघल गया, तो पिघल के क्या होता है, घृणा होती है। किसी कोई बात किसी ने आपको बोली तो क्या हुआ, किसी के अंदर आपने दोष देखा तो आपका जो चित्त था वो घृत हो गया, पिघल गया, यानी चंचल हो गया, तो क्या हो गया, घृणा हो गई उसके साथ, आपको उस वस्तु के व्यक्ति के स्थान के साथ घृणा हो गई। तो इसी प्रकार जब शरीर को हमारे को गर्मी लगी तो क्या हुआ, शरीर में पसीना आ गया, पिघल गया, पिघलने से क्या हुआ, पसीना आ गया। तो इसी प्रकार ये है क्या, जो घृणा का अर्थ क्या हुआ, घृणा का अर्थ है हमारे चित्त का दौर्बल्य, कमजोर, कमजोरी हमारी, घृणा और कोई बात नहीं है, हमारे चित्त का दुर्बल होना यही घृणा है। तो जो आदमी ऐसा चिंतन कर लेता है उसको किसी से द्वेष कभी नहीं होता ना, पहले भी कहा था, जिसको भय होता है, जिसको दुख होता है, जो अज्ञानवासी भूत रहता है वो फिर घृणा करता है, राग द्वेष करता है। तो जिसने सब आत्मा का दर्शन सब जगह कर लिया वो किसी से घृणा नहीं करेगा, यानी ना तो किसी से राग ना द्वेष, और उसका लक्षण है, उसको बोलते हैं ज्ञानी। गुरुदेव जी महाराज जी ने भी ये बात कही है कि ज्ञानी जो है, जो तत्ववेता है, उसकी निशानी क्या होती है, उसकी दृष्टि जब बन जाती है उसको हम ज्ञानी बोलते हैं, वो कैसा होता है। तो गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि भय का हुको देत नह नह भय मानत आन, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। भय का हुको देत नह, जिसके अंदर पहले भय था ना, वही किसी दूसरे, भय था ना उसके अंदर, और जो किसी से डरता है ना वो अपने से बड़े से डरता है, शक्तिशाली से डरता है, पहले किसी से डरता भी था और दूसरे को कमजोर को डराता भी था, भाव द्वैत था ना उसके अंदर, उसको सभी भूतों में आत्मा का दर्शन नहीं हो रहा था, स्वा से अतिरिक्त दूसरे को मानता था, तो जब स्वा से अतिरिक्त हम किसी को मानते हैं उसी से हम डरते हैं, अपने से अलग जब हम किसी का चिंतन करते हैं तभी डरते हैं, एक में डर नहीं होता है, अकेले आदमी अकेला हो उसको दूसरे का ज्ञान ही ना हो तो डरेगा नहीं, डरेगा जब सब अपने से अतिरिक्त किसी को बड़ा किसी को छोटा मानता है। तो ये कहते हैं कि जो ऐसा चिंतन कर लेता है ना, ना विजगुप्सते, वो किसी से घृणा नहीं करता, किसी से डरता नहीं, किसी की निंदा नहीं करता, उसी की बात गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि भय का हुको देत नह नह भय मानत आन, आन यानी अन्य, दूसरे किसी का भय मानता भी नहीं है और दूसरे को भय देता भी नहीं है। श्रुति भगवती भी यह बात कहती है, डंके की चोट से कहती है, द्वितीयाद वही भयम भवती, द्वितीयाद वही भयम भवती, तुझे से ही भय होता है, ये श्रुति कह रही है कि भय एक से नहीं होता है कभी भी, भय होता है तो दूसरे से होता है, तो जब तक दूसरा दिखाई पड़ता है तभी तक भय होता है, तभी तक भय दूसरे को देने का प्रयत्न किया जाता है, या दूसरे से लेने का प्रयत्न किया जाता है। तो जब सब जगह एक हो जाता है फिर किसी को भय देता भी नहीं है, किसी से भय लेता भी नहीं है, उसको ऐसा दर्शन हो जाता है, वो सुख दुख में, राग द्वेष में, निंदा स्तुति में सम हो जाता है, फर्क सोग जाके नहीं, बैरी मीत समान, ओह नानक सुन रे मना मुक्तता है तै जान, उसके अंदर ना हर्ष है ना शोक है, फर्क सोग जाके नहीं, बैरी मीत समान। ये सब जो द्वंद्व है कब होते हैं, जब हमारे अंदर द्वैत है, जब दूजा दर्शन करेंगे तभी ऐसा होगा कि किसी से राग किसी से द्वेष, जब दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही है, तो फिर नहीं, एको है भाई एको है साहब मेरा एको है, एक ही उसको साहब यानी परमात्मा, वो साहब मैं उसका चेहरा, ये कैसा भी वचन करते हैं गुरुदेव जी कि वो साहेब है, मैं उसका सेवक हूँ। तो ये एक व्यवहार की प्रक्रिया है, सेवक स्वामी भाव व्यवहार में होता है। ये तो साहेब ते सेवक, सेवक ते साहेब, क्या को कहे बहाना। ये तो कहते एक व्यवहार की वस्तु है, सेवक स्वामी भाव। जो मालिक है, नौकर है, सेवक है, स्वामी है, यानी जो द्वंद्व आत्मक प्रपंच दिखाई पड़ता है, ये तब तक दिखाई पड़ता है जब तक द्वैत है। तो इसलिए कहते हैं कि जो ऐसा चिंतन कर लेता है वो फिर किसी से घृणा नहीं करता। उसके जितने संसार के बंधन हैं सभी बंधनों से छूट जाता है, क्योंकि वेदांत की एक प्रतिज्ञा है ऐसी। कौन सी प्रतिज्ञा है? जस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। ये वेदांत की एक प्रतिज्ञा है, जस्मिन विज्ञाते, जिसको जान लेने पर सर्वम विज्ञातम भवति। जो कुछ भी है सब जाना हुआ सा लगता है, जाना जाता है, उसके बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। जस्मिन, जिस तत्व को जानने पर, जस्मिन विज्ञाते, वो कैसा तत्व है, तस्य भाषा सर्वविदं विभाति, वह वाला तत्व है, तस्य भाषा सर्वविदं विभाति, उसके प्रकाश से ये सभी प्रकाशित हो रहा है, ऐसा तत्व है। यस्मिन विज्ञाते, जिसके जान लेने पर सर्वम, सर्वम यानी इदम, इदम यानी नाम रूप, नाम रूपात्मक प्रपंच विज्ञातम भवति, सब जाना जाता है, ऐसा जो तत्व है, ये है वेदांत की प्रतिज्ञा। तो उस तत्व को जो जान लेता है, जो उसका चिंतन कर लेता है, विवेचन कर लेता है, सभी भूतों में आत्मा को और सभी भूतों को आत्मा में, उसके जितने बंधन हैं, जितनी फांसी है, सभी उसकी दूर हो जाती है। एक शास्त्र में बताया है कि आठ प्रकार की फांसी हरेक को पड़ी होती है, उसकी आठ की आठ ही दूर हो जाती है। कौन कौन सी है? घृणा, शंका, भयम, लज्जा, जुगुप्सा, चेती, पंचमी, और कुलम, शीलम, च जाति, च इत्यष्टौ पाशाः। ये आठ प्रकार के पास यानी फांसी है, बंधन है आठ प्रकार के। कौन कौन से? पहला है घृणा, और दूसरा है शंका, और तीसरी है भयम, और चौथा है लज्जा, और पांचवा है जुगुप्सा यानी निंदा, और छठा क्या है? कुल, कुल की जो मर्यादा के अंदर रहना, कुल का अभिमान, और शीलम, और आठवां है जाति। ये आठ प्रकार के पाश हैं, बंधा हुआ है जीव इनके अंदर। लेकिन वो जीव जिसके अंदर द्वैत है, जिसने आत्मा का दर्शन नहीं किया, जिसको यथार्थ रूप से आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, जो आत्मा को मानता है कि कर्ता भोक्ता मानता है, परिच्छिन्न मानता है, सुखी दुखी मानता है, जो आत्मा को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप नहीं मानता, उसको ये बंधन दुखी करते हैं। लेकिन जो तत्व ज्ञानी हो जाता है वो फिर किसी से घृणा नहीं करता। जैसे आपने एक कथा श्रवण की हो कि एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में संत कुमार जी महाराज बैठे थे अपनी मस्ती में, उनको नहीं मालूम, वो अपनी मस्ती में थे, उन्होंने देखा ही नहीं, और भगवान शिव को देख करके वो उठे नहीं। तो माता पार्वती को बहुत गुस्सा हुआ, फिर उन्होंने अपमान किया है शिव का, उठ करके नमस्कार नहीं की। तो वो अपनी मस्ती में ऐसे बैठे कहीं देख रहे थे, तो माता पार्वती ने शाप दे दिया कि ऊँट की तरह उधर देख रहे हो, ऊँट ही बन जाओ, ऐसा कह दिया, ऊँट बन जाओ। तो ऊँट बन गए वो संत कुमार जी, ऊँट बन गए। तो वो तो कह करके चले गए, कुछ दिन बाद फिर शिव जी महाराज कहते हैं कि चलो देख के आते हैं संत कुमार जी को कि कैसी अवस्था में है। तो जब आए, पार्वती माता जी भी साथ में थे, जब आए तो वो ऊँट ऊँट की शरीर में थे, तो वो नीम की पत्ती तोड़ तोड़ के खा रहे थे अपनी मस्ती से। वो आ करके पूछा भगवान शिव ने, कैसे हो, कैसा है? वो कहते पूछिए मत, कहना ही क्या है, माता तो माता ही होती है। कहते माता जी ने बहुत कृपा की है, इतनी कृपा की है कि अब ना तो किसी को उपदेश देने के लिए किसी के घर में जाना पड़ता है और ना किसी से भिक्षा मांगनी पड़ती है। वो कहने लगे ऊँट के शरीर में, कहते पहले जब थे तो किसी को उपदेश देने के लिए जाना पड़ता था, कहीं से भिक्षा मांगनी जानी पड़ती थी, अब तो मौज ही मौज है, ना कहीं उपदेश देते हैं ना किसी से भिक्षा मांगनी पड़ती है। वो कहते पहले स्नान भी करना पड़ता था शौच क्रिया जवाब, तो वो भी समाप्त हो गई, अब तो कोई जरूरत ही नहीं है, कहीं भी शौच कर लो और स्नान करने की जरूरत नहीं है, जब भी मन करता है मुँह उठाते हैं तो पत्ती खा लेते हैं। तो इसका मतलब है कि उनको घृणा नहीं हुई ना, वही भी शरीर मिला तो और मस्त हो गए। मतलब जो तत्ववेत्ता होते हैं उनको किसी से कोई घृणा नहीं होती, ना वो फिर किसी की निंदा करते हैं, लेकिन जब किसी की दृष्टि ऐसी बनती है तभी है ना, नहीं तो नहीं बन सकती। जब कोई आत्मा को सभी भूतों में देखेगा और भूतों को आत्मा में देखेगा तो उसको ऐसा दर्शन होता है, वो कहते फिर किसी की निंदा नहीं करता। इसी आत्म जो अवस्था है, तत्ववेत्ता की जो अवस्था है, उसका जो वर्णन है, अब सप्तमें मंत्र में भी ऐसे ही करते हैं, उन्हीं शब्दों को थोड़ा सा उल्ट करके करते हैं, जस्मिन सर्वाणी भूतान्य आत्मैवा भूत जानतः तत्र को मोहा को शोकः एकत्वमनु पश्यतः। ऐसा ही कहते हैं यस्मिन सर्वाणी भूतानी, यस्मिन यानी जिस काल में, जिस काल में जो तत्व ज्ञानी पुरुष के लिए सभी जो भूत प्राणी हैं अपनी आत्मा ही हो जाते हैं, जिस काल में जिस अवस्था में तत्व ज्ञानी के लिए सभी भूत आत्मा एव आत्मा ही हो जाते हैं, उस काल में क्या होता है, उस तत्व ज्ञानी को का मोह, किस बात का मोह होता है, कह सो कह, यानी उसको किसी बात का ना मोह ना शोक कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि सब जगह एकत्व मन पश्यतः एकत्व दर्शन करता है, इसलिए उसको ना तो फिर कहीं मोह होता है और ना शोक होता है। जो बात पीछे थोड़ी श्रुति ने छिपा ली थी ना, इसमें स्पष्ट की है, बात कौन सी है, और रहस्यमयी बात यह है कि ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, पहले कहा था कि आत्मा सभी भूतों में है और सभी भूत आत्मा में है, लेकिन स्पष्ट रूप से तत्ववेत्ता की जो अवस्था है उसका वर्णन नहीं किया था, अब कर रहे हैं इसमें, कि ये जो आपको जितना दिखाई पड़ रहा है ना, ये केवल आत्मा का ही विलास है, कुछ हुआ ही नहीं, बदला कुछ नहीं है, ना आत्मा भूतों में है ना भूत आत्मा में है, यानी दो होंगे तो तब हम आधारा आधे भाव बनाएंगे। यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि दो है ही नहीं, एक ही है, दो होते तब आप कहते कि दो हैं अलग अलग, दो नहीं हुए, लेकिन ऐसी दृष्टि जब बनती है तभी होता है ना, बिना दृष्टि के नहीं। जब ऐसा चिंतन करता है तत्ववेत्ता तो फिर सभी में उसको दर्शन होता है अपना, आत्मा अपने आप को जानेगा तभी है ना, केवल ये नहीं कि आत्मा का दर्शन सब में कर लिया और आत्मा में सबका दर्शन कर लिया तो दर्शन करने वाला अलग हो, ऐसा भी तो नहीं होगा ना। चिंतन तो ऐसा करेंगे, हम श्रवण करके करेंगे कि ऐसी दृष्टि बनाएं कि सभी भूत आत्मा में है और आत्मा सभी भूतों में है, तो हम अलग होकर के ऐसा देखेंगे क्या, तब कहाँ द्वैत खत्म होगी। अपने आप का दर्शन करना सब जगह, ये नहीं कि अपने आप को परमात्मा समझ लो, जानने वाला समझ लो, ज्ञानी समझ लो, तो ज्ञान को अलग मान लो, कि मेरे को भूत प्राणियों का भी ज्ञान है, मेरे को आत्मा का भी ज्ञान है और मैं जानने वाला हूँ, तब तो त्रिपुटी हो जाएगी ना। फिर कहाँ आत्मस्वरूप होंगे, हमारी एकता कहाँ होगी। यानी अपना ही दर्शन करना, अपने अतिरिक्त कुछ भी ना दर्शन करना, यही होना है ना। अलग मान के दूसरी जगह दर्शन नहीं करना आत्मा का, अपने से अतिरिक्त कहीं आत्मा का दर्शन जो करना चाहता है या करता है, मानो उसको कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ। जो अपने से अतिरिक्त, स्वा से अतिरिक्त जो कहीं मानता है, ईश्वर को मानता है या किसी को भी मानता है, मानो वो ज्ञानी नहीं है। तो हमारा तो ये हमारी वृत्ति रहती है सदैव कि हम अपने से अतिरिक्त ही मान के पूजा करते हैं, अपने से अतिरिक्त मान के ही ध्यान करते हैं, अपने से अलग मान के ध्यान करते हैं ना किसी का। तो जब तक अपने से अलग मानेंगे तो ईश्वर और आत्मा एक कैसे होंगे। हम अपने आप को छोटा मानेंगे तो बड़ा मान के करेंगे ना। अभी आगे केन उपनिषद में आएगा कि जिस जिसको आप अलग मानते पूजा करते हो वो ब्रह्म नहीं है। नेत्र से जिसको आप देखते हो वो ब्रह्म नहीं है, जो नेत्र को देखता है वो ब्रह्म है। कान से जिसको सुनते हैं वो ब्रह्म नहीं है, जो कान को सत्ता देता है वह ब्रह्म है। जो प्राणों के द्वारा आप देखते हैं वो नहीं, जो प्राणों को चलाता है वो ब्रह्म है। तो इसलिए अपने से अतिरिक्त नहीं दर्शन करना, कहीं अपने आप को ही सब जगह देखना है। जैसे गुरुदेव जी महाराज एक बार स्तुति कर रहे थे परमात्मा की, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, तो वो स्तुति करते करते, जब उनका स्तुति करते करते एकता हो गई, ध्यान में स्थित हो गए, यानी शरीर में है तो व्यवहार में कर रहे थे, बोल रहे थे ऐसा कि जमी जमी तुही, जमा तुही, अभूत ही, अभूत ही, अभय तुही, अछूत ही, अचय तुही, ऐसा बोल रहे थे। बोलते बोलते जब एकता हो गई, यानी अपने आप का दर्शन किया, पहले तो सेवक स्वामी भाव से ही स्तुति की जाती है ना, लेकिन जब स्तुति करते करते, जैसे कबीर जी कहते हैं कि तू तू करता तू हुआ, कह रहे थे ना कि ये जो कुछ दिखाई पड़ रहा है सब तुम हो, जमी तु ही, जमा तु ही, अभू तु ही, अभय तु ही, अशू तु ही, अशय तु ही, जतस तु ही, व्रतस तु ही, गतस तु ही, मतस तु ही, ऐसा तू ही बोल रहे थे। तो इतिहास में ऐसा आया है कि तू ही 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 ऐसा करने लगे तो इतने समाधिस्थ हो गए, 16,000 बार ऐसा बोला, 16,000 बार तू ही तू ही तू ही तू ही, मतलब उनको नहीं मालूम रहा कि कहाँ बैठे। इस प्रकार अपने आप का दर्शन करते हैं, तू तू करता तू हुआ, तू ही कह रहे थे और तू ही में मस्त हो गए, तू ही का रूप हो गए। जैसे गुरु नानक देव जी महाराज जब बैठे थे सुल्तानपुर में, तो क्या मोदी खाने में बैठे क्या कर रहे थे, तेरा 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 में मस्त हो गए। वहाँ से तेरा तेरा शुरू किया तो जब अंत में पहुँचे तो तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही में हो गए, उसी के मानो उसी में चले गए, उसी का रूप हो गए। यानी एकता करके ही अपना दर्शन किया है। पहले तू ही करने से दूसरा होता है, जब हम तुम बोलेंगे तो मैं और तुम अलग अलग होते हैं ना, लेकिन तू तू करता तू हुआ, यानी जो उनकी शरीर का मैं थी, गौण मैं थी, मिथ्या मैं थी, उसको तुम में मिला दिया, तो तू तू करता तू हुआ। कब ऐसा हुआ, मुझ में रहा ना हूँ, जब तक अहम था मैं थी तब तक तू नहीं हुआ। ये कब तक है, ऐसा कब तक है, जब तक द्वैत का दर्शन होता है, जब आपा पर का मिट गया उतनी देर तक तू नहीं हुआ। जब तक अपने से अतिरिक्त कोई देखता है ना आपा पर का, अपना आप इसको मानता है और यानी मैं और मेरा, जब तक मैं और मेरा का दर्शन होता है ना आपा पर का जब तक दिखता है, तब तक तू नहीं हो सकता, एकता नहीं हो सकती। अलग रह करके आत्मा का दर्शन कहीं नहीं हो सकता। यदि हम कहें कि हम अलग रह करके दूसरी जगह आत्मा का दर्शन कर लें, जहाँ दूसरे में देख लें हम अपने आप को अलग मान के, तो कभी नहीं होगा। ये जो जहाँ पर दृष्टि कह रहे हैं कि सभी भूतों में आत्मा है, यानी भूतों में परिवर्तन नहीं करना, उनको बदलना नहीं है आत्मा रूप में, वो तो वैसे ही रहेंगे, अपने आप की जो दृष्टि है उसको बदलना है, यथार्थ रूप में स्थित होना है। जब हम आत्मा हो गए तो आत्मा से अतिरिक्त कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा दर्शन जो करते हैं उनकी जहाँ पर दृष्टि का वर्णन कर रहे हैं कि वो करते करते ऐसा हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कब नहीं हो रहा, जब आपा पर का देख रहे हैं, मैं और तू की कल्पना कर रहे हैं, जाति की कल्पना, कुल की कल्पना जब तक करते हैं, अभिमान किसी बात का भी तब तक नहीं। अत सुंदर कुलीन चतुर्मुख ज्ञानी तनवंत मृतक कहिए नानका, ये बात है कि जब तक इतने गुण होते हुए, गुण है ना हमारे अंदर, कुल का अभिमान है, जाति का अभिमान है, शरीर का अभिमान है, पद का अभिमान है, तो इसमें कहाँ दर्शन हो रहे हैं। जब ये होगा कब, जब आपा परका मिट गया। कल भी हमने एक पंक्ति आपको श्रवण कराई थी कि जन नानक बिन आपा चीने, अपने आप को चीनने का मतलब क्या हुआ, चीनना कहते हैं पहचानना, कहते ना आपको चीन लो, इसको चीन लो यानी पहचान लो। आपा जब तक नहीं पहचानते तो हम आपा किसको पहन, हम कहते हैं हम अपने आप को जानते हैं, कोई आपको पूछेगा आप अपने आप को जानते हो, आप कहेंगे हम जानते हैं, पूछेगा आप कौन है तो आप अपना नाम बताएंगे, आप कहाँ रहते हैं अपने घर का नाम बताएंगे, यही पहचान है ना हमारी। तो आपा हमारा कहाँ चीना हमने, जब अपना आप जानोगे तब कहते हैं कि आपको दर्शन होगा। जो ऐसा पहचान जाता है वो फिर बोलता है कि सभी घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे, ऐसा बोलता है, बोलता नहीं है ऐसा, यानी अनुभव करता है, इस स्थिति में पहुंच जाता है कि सभी घट राम बोले, कोई भी आवाज़ उसके कान में पड़ती है तो उसको ये नहीं लगता कि ये फलाए आदमी की आवाज़ है, बोलता सभी घट राम बोले, सभी घट घट में राम ही बोल रहे हैं, रामा बोले राम बिना, वो कहता राम के बिना तो कुछ है ही नहीं, कोई आवाज़ पड़ती उसके कान में तो उसको राम ही सुनाई पड़ता है, सिया राम मैं सब जग जानी, जब होता है तब उसको ऐसा होता है, फिर वो ऐसा बोल देता है, ऐसी उसकी अवस्था हो जाती है कि जो बोलते हैं मृग मीन पंखेन, मृग यानी पशु, मीन यानी जो जल में रहने वाले, पंखेरु यानी पक्षी, वो कहता है जो बोलते हैं मृग मीन पंखेरु सो बिना हरि जापत है नहीं हो रहा, वो कहता हरि के बिना कुछ भी नहीं, सब हरी हरी बोल रहे हैं। तो ऐसी उसकी अवस्था तभी बनती है जब वो स्वयं हरी हो जाता है, स्वयं राम हो जाता है। जब तक अपने से अलग कहीं राम की कर रहे हैं ना उपासना, राम को अलग मान रहे हैं, तब तक नहीं, उसके साथ अभेद होना पड़ेगा। जब हम खुद राम बन जाएंगे, खुद कृष्ण बन जाएंगे, खुद गुरु नानक बन जाएंगे, मतलब उसी का रूप हो जाएंगे, तब उनका हमारा अभेद होगा। नहीं तो जब तक भेद में उपासना करते रहेंगे तब तक दुख की निवृत्ति अत्यंत तक नहीं होगी, प्रसन्नता नहीं मिलेगी हमारे, सदीवी जो अविनाशी सुख है वह नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं ऐसा चिंतन करना चाहिए। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री स्वामी निर्मल जी महाराज की, सद्गुरुदेव महाराज की, हर हर महादेव। Thank you.